نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درشي پڑھ لیجئے اللهم درود و سلام نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور اصحاب پر۔ بڑے بڑے سخت علماء اور مشائخ اس بات پر بہت فکر مند ہیں کہ ہم مسلمان جس کثرت کے ساتھ گناہوں میں ترقی کرتے جا رہے ہیں اور تقوی کا ویسے ہی فقدان ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، تو دنیاوی طور پہ ہم لوگ ترقی کی خواہش بھی رکھتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن دین میں ترقی کا ہم لوگوں کو شوق نہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ تھوڑی سی دنیا پر کسی طرح راضی نہیں ہوتے، گزارے لائق دنیا پر ہم لوگ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے۔ اعلیٰ گھر بھی چاہیے، وہ الگ بات ہے خواہش پوری نہ ہو، لیکن خواہش سبھی رکھتے ہیں، تگ و دو بھی کرتے ہیں، بڑا اچھا شاندار گھر ہو، بڑی زیرو میٹر گاڑی ہو، شادی ہو تو حسین و جمیل لڑکی سے ہو، اعلیٰ خاندان سے ہو، تنخواہ ہو، کاروبار ہو تو تنخواہ بھی اعلیٰ ہو، کاروبار بھی زبردست شاندار اعلیٰ ہو، ہر چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہو۔ بھائی اچھی بات ہے، یہ بھی جائز چیزیں اللہ نے فرمایا، دنیا کی محبت بھی ہم نے تمہارے قلوب کے اندر رکھی ہے۔ تو ہم لوگ دنیا کے معاملے میں کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہیں، نیچے آنے پہ تیار نہیں ہیں، لیکن جب دین کے اوپر بات آتی ہے تو کہتے ہیں بس تھوڑا سا کافی ہے، یہ نماز پڑھ تو لی، ماشاءاللہ میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہے۔ آج سب بتاتے ہیں بعض لوگ، ماشاءاللہ میں نے یہ بھی کیا، ماشاءاللہ میں تہجد میں اٹھا تھا، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہے، لال ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے، ریاکاری بھی ہو رہی ہے۔ اب زیادہ کیا بھائی، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے دین پہ چل رہے ہیں۔ اب بعض لوگ اگر کوئی بیچارہ کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے یا کوئی خاتون شرعی پردہ کرتی ہیں تو فوراً اس بیچارے کو باتیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، اتنا زیادہ کیوں، اتنا زیادہ کیوں، کافی تو ہے نماز روزہ پڑھو، قرآن پڑھو، بس کافی، اتنی گہرائی میں کیوں جا رہے ہو، اتنی شدت پسند کیوں بن رہے ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں بہت زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، ان کو اپنے دنیاوی معاملے میں، دنیاوی معاملات میں اپنی شدت پسندی ان کو نظر نہیں آتی، وہ معمولی سے دین کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ، لیکن معمولی دنیا پر کسی طرح راضی نہیں ہوتے۔ بھائی جس ترتیب آپ کی دنیا کے معاملے میں اعلیٰ اور ہائی لیول کی چل رہی ہے، تو دنیا پہ بھی تو نظر، آخرت پہ بھی تو ہم نظر رکھیں، ہمارے اعمال کیا جا رہے ہیں، وہاں شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ ہمارے معمولی سے اعمال کو بہت کبیر، بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے، ارے تم صدقہ خیرات بھی تو کرتے ہو، تم فلا فلا نیک اعمال بھی تو کرتے ہو، تم دو گھروں کا خرچہ چلا رہے ہو، بس اب وہ سمجھ رہا ہے جنت پکی مہر لگ گئی، لیکن ہزاروں گناہ چل رہا ہے، بڑے بڑے کبائر چل رہا ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم وہی بات کہ دنیا کے معاملے میں ہماری سوچ کچھ اور ہے، اور آخرت اور ہمارے جو نیک اعمال ہے اس کے معاملے میں ہماری جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یہ نفسیاتی ہونے سے بچا رہے ہیں، ڈپریشن سے بچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ دنیا کے معاملے میں سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس سے ڈپریشن کا مرض پیدا نہیں ہوگا، شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے کہ تو نے مجھے ابھی بھی لاکھوں لوگوں سے اچھا رکھا ہے، تو شکر پیدا ہوگا دنیا کے معاملے میں۔ اور دین کے معاملے میں سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس سے تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اب کسی کے داڑھی ٹوپی بھی ہے، کچھ بھی ہے، وہ تھوڑے بہت نیک اعمال کر رہا ہے، وہ اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھے گا، وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دے جو بے داڑھی والے لوگ ہیں یا جو بے نمازی ہیں، تو وہ تکبروں میں مبتلا ہو جائے گا، شیطان اس کو مار دے گا، ہلاک کر دے گا فرشتے سے، وہ کیا کہہ کر، دیکھو میرے تو الحمدللہ داڑھی بھی ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اسے تو داڑھی بھی مونتا اور یہ بیٹھا رہتا نماز ہی نہیں پڑھتا، تو اس کی غلطی کیا ہوئی کہ اس نے اپنے سے دین کے معاملات میں، اخروی اعمال کے معاملے میں اس نے اپنے سے نیچے والے دیکھنے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اس سے خراب ہوگا معاملہ۔ تو اس کو چاہیے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، دین میں اللہ والوں کو دیکھے، ان کے کیا معاملات ہیں، تو پھر شرم آ جائے گی، لو جی मैं तो अपनी दाढ़ी और नमाज को ही पत्नी बहुत कुछ समझ रहा था, इनके तो मामलात ही अलग है। तो दीनी मामलात में अपने से ऊपर वालों को देखना है, उससे आदमी के अंदर रश्क पैदा होगा और फिर वो तगोदौ कोशिश करेगा कि मैं भी इन जैसे अमाल करूं। तो हम लोग उल्टा करते हैं, दुनिया के मामले में से अपने से ऊपर के लोगों को देखते रहते हैं, जिससे नाशुकरी का मर्ज पैदा होता है। किसी के पास गाड़ी है तो कहेगा यार गाड़ी तो है मेरे पास, गाड़ी तो है मेरे पास, लेकिन यार ये जो मेरे जो कज़न है ना इसके पास जो गाड़ी है ये बड़े आला मॉडल की है, ये मैं पता नहीं कब मुझे नसीब होगी। अब ये नहीं देख रहा भाई तुझे कम से कम अल्लाह ने गाड़ी तो दी है, भाई कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी है ही नहीं, सारी बात। अब वो अपने से ऊपर वालों को देख रहा है ना, तो अब गाड़ी एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ, अब अपनी गाड़ी से खटारा लग रही है और दूसरे की जीरो मीटर गाड़ी उस पर वो बहुत आला लग रही, शुक्र नहीं कर रहा वो। तो भाई तुम्हें जो अल्लाह ने गाड़ी दी कितने लोग हैं जिन बेचारों को बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, पैदल चलते हैं, बसों में फिर रहे होते हैं, तुम्हें गाड़ी तो दी ये तो शुक्र अदा करो, लेकिन वो है ही नहीं क्योंकि मर्ज पैदा हो गया किस चीज़ का, नाशुकरी का। मैं एक बार एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, मेरी आंखों देखा, सच्चा वाक़ है और कम से कम 30 साल पुराना वाक़ है, लेकिन आज तक ऐसा याद है कि अल्लाह पाक ने इसलाह ऐसी करी कि क्या बताएं। बस मैं बैठा हुआ था डॉक्टर साहब के पास, जनरल फिजिशियन थे बहुत बड़े, तो एक आदमी आया उनके पास और जब उसने बातचीत शुरू करी अपना मर्ज बताया, उसने पूछा जी क्या मसला है आपके साथ, तो उसने कहा बताया अपना तारुफ कराया, तो पता चला यानी एक करोड़पति आदमी है वो और सदर में उसकी 8-10 बड़ी दुकान है इस तरह की और भी बहुत बैंक बैलेंस, बल्कि शायद अरबपति आदमी होगा वो, इतना पैसे वाला। और लग भी रहा था वो बातचीत से अपने हुलिये से, फिर थोड़ी देर में उसने अपना मर्ज ये बताया कि जब मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ होता हूँ तो जो चीज़ मैं दे रहा हूँ सामने वाली दुकान वाला भी वही चीज़ दे रहा है, जो पैसे मैं दे रहा हूँ मांग रहा हूँ वही वो भी मांग रहा है, जब सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो रश उसके पास ज़्यादा होता है। मैं सुबह से लेके शाम तक ये तमाशा देखता रहता हूँ कि लोग पागल हैं अंधे हैं ये उसके पास क्यों जाते हैं, मैं भी तो वही चीज़ दे रहा हूँ, वही कीमत है, वही क्वालिटी है, तो मेरे पास क्यों नहीं आते। तो कह रहे हैं जो मुसलसल जो मेरी एक सोच जो महवर मेरी इस फिक्र के ऊपर रहता है उससे हसद का मर्ज पैदा हो गया था उसको, आज पता चला ये मर्ज। तो उसने बताया कि ये गौर करते करते मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरी कानों में से और मेरी कनपटियों में दर्द हो रहा होता है और मेरी आंखों में खून उतरा हुआ होता है और मुझे अब रात में नींद नहीं आती और मेरे सर की रगों में दर्द रहने लगा है इस कैफियत से। बताइए आप, ये करोड़पति अरबपति आदमी की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है कि नाशुकरी का मर्ज, दुनिया परस्ती का मर्ज, इतना अल्लाह ने उसको दिया हुआ लेकिन उसको यही हसद है कि कस्टमर जो है वो उसके पास ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, मेरे पास कम क्यों आते हैं, ये फिक्र उसको खा गई और बीमार और नफसियाती बना दिया उसको। वजह क्या थी, शुक्र नहीं था उसके अंदर, दुनिया 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 दुनिया। इसलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अंधा कर दिया माल की हविश ने और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दुनिया की भाग दौड़ में शामिल होने के लिए खूब माल इकट्ठा कर लूँ, खूब दौलत जमा कर लूँ, अंधा कर दिया, बिल्कुल पागल कर दिया तुम्हें, बावला कर दिया तुम्हें, होश ही नहीं रहा, हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर, यहाँ तक के तुमने कब्रें देख डाली, अचानक मौत आ गई और कब्र में पहुँच गए। तो अल्लाह पाक यही मर्ज बता रहे हैं कि दुनिया के पीछे इतने पागल मत हो। आप सिलसिला इरशाद फरमा रहे हैं जो कोई रुख एक गम अपने सीने में पाल लेगा अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत के सारे गमों से उसको निजात दे देंगे। एक गम ऐसा प्यारा, ऐसा मुबारक, इतना शानदार, ऐसा प्यारा गम है, जो एक गम एक फिक्र अपने सीने में पाल लेगा दुनिया और आखिरत के सारे गमों से निजात। सहाबा कराम ने पूछा रसलम वो ऐसा मुबारक प्यारा गम कौन सा है, तो आपने इरशाद फरमाया अल्लाह को राजी करने का गम, फिक्र आखिरत का गम कि किसी बात से अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो रहा, किसी गुनाह कबीरा में मैं मुब्तला तो नहीं हूँ, बस अल्लाह मुझसे राजी रहे, अगर मर गया तो अपने साथ क्या लेके जाऊँगा, क्या तोशा आखरत मेरे पास है। ये गम जो आदमी सुधेड़ बुन में लगा रहता है इसकी बरकत से अल्लाह उसके जितने भी गम हैं सारों से निजात दे देते हैं। अभी हदीस शरीफ को उल्टा कर लिए, जो ये एक गम सीने में नहीं पालेगा, अल्लाह को राजी करने का गम, अल्लाह को खुश करने का गम, गुनाहों से बचने का गम, तो फिर हदीस शरीफ को अगर उल्टा करें ये गम नहीं पालेगा तो तमाम गम उसके सीनों के अंदर अल्लाह पाक भर देंगे। और ये हदीस शरीफ में अल्लाह ने फरमा दिया कि जो हमारी याद से हरास करेगा हम उसके सीने को गम और फिक्रों से भर देंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया ए आदम के बेटे अच्छी तरह सुन ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का खुलासा बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने کتنے ایسے احکامات ہیں جو براہ راست آپ نے فرمایا, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہہ کے, لیکن اس میں اللہ پاک کا عجیب ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ہائی الرٹ, اور بعد میں پھر خبر آتی ہے کہ بھائی ذرا ہوشیار باش, جس کو کہتے ہیں نا ہوشیار باش, انتباہ, ہائی الرٹ. تو اللہ پاک ہائی الرٹ کر رہے ہیں پہلے, بات وہ بعد میں بتا رہے ہیں, اے آدم کے بیٹے اچھی طرح سن لے, بات بعد میں آئے گی, کہ تجھے بھول جانے کی عادت ہے. کیا مطلب؟ اے آدم کے بیٹے تو بھولتا بہت ہے, لیکن یہ جو بات بتا رہا ہوں نا یہ بہت اہم ہے, یہ مت بھولنا. اگر تو میری یاد سے اعراف کرے گا تو میں تیرے سینے کو غم اور فکروں سے بھر دوں گا. میری یاد سے اعراف کرے گا تو میں تیرے سینے کو غم اور فکروں سے بھر دوں گا, معیشت زن کا, اور تیری زندگی کے جتنے بھی شعبے سب تلخ کر دوں گا, کڑوے کر دوں گا, چین نہیں ملے گا. اللہ کی یاد سے اعراف کرنا, حضرت والا کے اشعار بھی تھا نا, جو تیری یاد سے گریزاں نکلا, جدھر بھی نکلا وہ حیران و پریشان نکلا. اکثر کلام لگاتا رہتا ہوں. تو بس یہ سمجھ لیں بھائی, تو اگر سارے دنیا اور آخرت کے غموں سے بچنا ہے تو ایک غم سینے پالنے کہ کسی بات سے اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا, فکر آخرت کا غم, کسی گناہ کبیرہ میں ہم مبتلا تو نہیں ہے, موبائل فون پہ گندی فلمیں تو نہیں دیکھ رہا, بد نظری تو نہیں کر رہا ہے, اور اسی طرح سے میوزک وغیرہ تو ہم نہیں سن رہے. رسول اللہ کی لعنت کی بدعا آتی ہے بد نظری کی وجہ سے. لعنت کے بعد چین کہاں ملے گا, مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا مصیبت سے نکال دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں بھائی, آج ہم کہتے ہیں اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے, ارے ظالم اللہ کے وعدے تو پکے ڈھکے پورے ہوں گے. اللہ اپنے انکا لا تخلف المیعاد, اللہ نے فرما دی میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خرابی جو ہے وہ اللہ پاک کے قرآن پاک میں, اس کی آیتوں میں نہیں ہے نعوذ باللہ. آج لوگ اللہ رسول کی باتوں سے مایوس ہو رہے ہیں, اپنے آپ سے مایوس ہو بھائی, تم اللہ کے حساب سے نہیں چل رہے, اللہ کے وعدے تو فوراً امپلیمنٹ ہوں گے, ہم ریکوائرمنٹ تو پوری کریں. فجر کی نماز ہے ہی نہیں, کوئی پڑھتے تو ایسی پڑھتے, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی, یا گھر میں پڑھ لی. عجیب و غریب ہمارے طریقے ہوتے ہیں, نماز پڑھ لی تو قرآن پاک پڑھ لیا, تو اس کے بعد موبائل پہ موبائل لے کے بیٹھ گئے, تو جتنے انوارات بنے تھے سب برباد, سب ختم, غیر شرعی تقریبات میں جا رہے ہیں, گناہوں میں لگے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, سالی بھابھی سے کوئی نظروں کی حفاظت نہیں ہے, ماموں زاد, خالہ زاد, چچا زاد, جتنی بھی لڑکیاں کزن ہیں یہ خاندان کی نامحرم عورتیں چلتے پھرتے, ان سے نظروں کی کوئی حفاظت نہیں ہے. ماشاء اللہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, داڑیاں ٹوپیاں بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ نیک اعمال کے ساتھ جو لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں. گناہ سے تو بچ ہی نہیں رہے تو کہاں سے ایمان کی حلاوت آئے گی, مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ وہی بات کہ شیطان ہم کو دنیا کی جو معاملات میں تو بہت ہائی لیول کی چیزیں دکھاتا ہے, لیکن اخروی اعمال جو آخرت سے متعلق جو ہمارے اعمال ہیں اس کے معمولی اعمال کو میں بہت کبیر بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے. ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں میں تو ویسے قلندر قطب ابدال تک پہنچا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے مزید آگے بڑھنے کی. تو بھائی یہ شیطانی دھوکے ہوتے ہیں سارے. تو جس طرح ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی پسند کرتے ہیں, تو دین کے معاملے میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی پسند کریں, دینی احکامات کی اور تقوی کی. اور دین کی اعلیٰ کوالٹی کسے کہتے ہیں بھائی؟ دین کی اعلیٰ کوالٹی کہلاتی ہے تقوی, گناہوں سے بچنا. ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ نیک اعمال کے بارے میں اس نے اور ظاہری عبادات سے متعلق کچھ سوال جواب کیے, اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تقوی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا, تم ظاہری عبادات کو تقوی کے مساوی برابر مت قرار دو, تقوی بہت بڑی چیز ہے, تقوی بہت بڑی چیز ہے. نفی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, برابر مت قرار دو نماز, روزہ اور زکوٰۃ اور حج, یہ تو فرائض میں سے, یہ بھی تقوی کی قسم ہے. لیکن بھائی تقوی ان نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں وہ متقی کہلاتے ہیں. تو آج دیندار تو بہت نظر آئیں گے, لیکن متقی آپ کو ہزاروں میں سے ایک بھی مشکل سے ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی نہیں آ رہی, تبدیلی بھائی کیسے تبدیلی آئے گی؟ تقوی تو تقوی کہاں ہے؟ پورے پورے ایک ایک ہزار لوگ خاندان ہوتے ہیں, لیکن ان خاندانوں میں ایک آدمی متقی مشکل سے ملے گا آپ کو ڈھونڈنے سے بھی. اور سارے اللہ کے وعدے کن لوگوں کے نہیں ہیں؟ متقی کے نہیں. باقی ضمانت نہیں, گارنٹی نہیں, اللہ پھر بھی فضل فرماتے ہیں ہم جیسے گنہگار لوگوں پہ, لیکن جو اعلیٰ میں آ رہا ہے اللہ کو جو ریکوائرمنٹ ہے, جو اللہ کے سارے وعدے پورے ہوں گے, دنیا آخرت میں, دنیا اور آخرت میں چین سے سکون سے رہنے کے, پیسہ بھی دیں گے, مصیبت سے نکالیں گے, کاموں میں آسانی پیدا کریں گے, اسے مستجاب و دعوات بنا دیں گے, اس کی کثرت سے دعائیں قبول ہوں گی, اپنا مقرب بنا لیں گے, اور اللہ اور رسول کا وہ خاص ہو جائے گا, کشف الہام تک آدمی کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر مزین ہیں, تقوی کے اندر چھپی ہوئی. کیوں بھائی؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تقوی سے رہنے میں ذرا دل کو تکلیف ہوگی, دل پھٹے گا, ذرا غم ملے گا, خاندان والوں سے لعنت ملامت ملے گی, برا بھلا لوگ کہیں گے, غم حسرت اٹھانا پڑے گا. نیک اعمال کرنے میں غم حسرت نہیں اٹھاتا آدمی, مزہ بھی آتا ہے, بعض دفعہ کیفیات بھی بنتی ہیں. لیکن کوئی حسین چہرہ ہو اور سامنے سے آ رہا ہو اور دل میں ایک نفس میں پک اپ اٹھے اس کا میک اپ دیکھ کے کہ بھائی دیکھو اندر سے تو ایک آتی ہے نا آواز, چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو, کوئی بھی ہو, شیطان تو نفس سے ہمارا, اندر کا شیطان اور باہر کا شیطان دونوں جو ہے وہ تقاضا کرے گا بھائی دیکھ تو لو, لو نہ لو کچھ, لو نہ لو دیکھ تو لو. لیکن وہ بندہ نظر نیچی کر کے گزر جائے وہاں سے, نہیں دیکھے, اب رینج سے بھی آؤٹ ہو گئی وہ حسینہ, اب کیا کرے بھائی, اپنے دل کو دیکھے, دل میں تکلیف, چبھن, کڑھن, جلن, غم محسوس کرے گا وہ. بس یہی غم, یہی تکلیف اللہ کو چاہیے, اور یہ ولایت کا نور بنتا ہے اس تکلیف سے, اسی سے متقی بنتا ہے, اسی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اس بندے نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا, اپنے دل کے پرخچے اڑا لیے لیکن اس نے اللہ کے حکم کے پرخچے نہیں اڑائے. یہی فرق ہوتا ہے ایک بے وفا بندے میں, اللہ کے مقرب بے وفا بندے کون ہوتے ہیں اور اللہ کے باوفا بندے کون ہوتے ہیں, یہ ایک مثال دینے کو بتا دیا. خالی نماز قرآن ذکر اذکار سے تھوڑی پتہ چلتا ہے, مبارک ہے یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا نیک بندہ ہے, لیکن نیک کہہ سکتے ہیں ہم, جوفی دیندار کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو متقی کہنا ہرگز جائز نہیں ہے. دیندار بہت ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں, لیکن متقی بہت کم ہیں. اسی حضرت والا ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب, ہمارے پیارے مرشد اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, رحمت اللہ, ارشاد فرماتے تھے کہ میاں کہیں تقوی کا مال مل جائے تو قدر کر لو, کیونکہ تقوی مارکیٹ میں بہت شارٹ ہے, تقوی مارکیٹ میں بہت شارٹ ہے. اور اگر کوئی لڑکیاں کے ساتھ کبھی کسی کا واسطہ پڑ جائے غیر اختیاری طور پہ, انجانے میں جان جان کے نہیں گھسنا, انجانے کی واسطہ پڑ گیا عورتیں لڑکیوں کے ساتھ, کوئی دیندار بھی ہو, اب دیکھنا ہو اللہ والا ہے نہیں ہے, متقی ہے یا نہیں ہے, اگر اس کی نظر زمین میں گڑ جائے اور نظر نہ اٹھائے تو سمجھ لو اس کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ ہے, اس کا رابطہ آسمان والے کے ساتھ ہے. اور بغیر کتنے وہ حاجی صاحب ہوں اور کتنے بڑے وہ دیندار ہوں, چاہے کوئی بھی ان کو دینی منصب حاصل ہو, لیکن اگر وہ عورتوں میں اختلاط رکھتا ہے, وہ شخص کوئی احتیاط نہیں کرتا, بد نظری بھی کرتا ہے, بات چیت بھی کرتا ہے, جس طرح مردوں سے بات چیت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, جس طرح بھی ہو, تو ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کا مقرب اور کبھی ولی نہیں ہوتا, دیندار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ناری بات سن میں, تو یہ ایک پیمانہ ہے, یہ ایک پیمانہ بتا دیا. تو آج کل تو بعض اللہ والے بھی اپنے آپ کو شو کرتے ہیں, جو جعلی پیر ہوتے ہیں, تو وہ وہاں تو لڑکیوں کو بھی بٹھایا ہوا ہوتا, انہوں نے بیان چل رہا ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سامنے تو آؤ ہمارے, نہیں تو جب بخشش کرائیں گے ہم اللہ کے دربار میں قیامت والے دن, تمہیں پہچانیں گے کیسے, تو دنیا میں تو انٹروڈکشن کرا دو, ذرا دکھا دو, ذرا دیکھ تو لیں ہم تم ایک نظر, تاکہ ہم کہہ سکیں نہیں نہیں یہ بھائی ہم سے بیعت تھی. تو ایسے ایسے لچر اور ذلیل دلیلوں سے وہ عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں, ہے نا, کچھ جنات پال لیے انہوں نے, شوبدے بازی ہو جاتی, کچھ کام ہو گئے تو لوگوں نے پکا اللہ والا سمجھ رہے ہیں, بھائی وہ اللہ والے نہیں ہیں, وہ تو عامل ہیں, وہ دو چار جناتوں سے کچھ شوبدے بازی ہوں گی, کام ہو گیا تو لوگوں نے اس پہ عقیدہ بنا لیا. تو بہرحال یہ بات تو بتا دی, بیچ میں آ گئی تھی, تو بات چل رہی تھی کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے بہت ہائی لیول تک جاتے ہیں, وہاں کسی کو شدت پسندگی کوئی نہیں تانے دیتا کسی کو, یار آپ اتنا شدت پسند کیوں بن رہے, ایک فیکٹری آپ کی ہے تو صحیح, دو گھر ہیں آپ کے, آپ کہہ رہے ہو میں ایک اور گھر لے رہا ہوں, آپ کی چار دکانیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں دو دکانیں اور لے رہا ہوں, کیوں بھائی کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے ہو, کبھی دیکھا کسی کو باتیں پڑھ رہی ہوں کہ بھائی آپ دنیا کے معاملے میں اتنے شدت پسند کیوں بن رہے ہو, لیکن سب کہیں گے نہیں نہیں ماشاء اللہ مبارک ہو, اللہ اور دے, ہے نا. کوئی بیچارہ ذرا سا, ایک تو تقوی, ایک بھائی بات کہ ایک تو تقوی نہیں ہے مارکیٹ میں, لوگ متقی ہیں ہی نہیں, تھوڑے بہت جزوی دیندار بھی کم ہیں, جو تھوڑے بہت بیچارے جزوی دیندار ہیں کہیں صحبت میں جاتے ہیں, کچھ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو بیچارہ وہ تقوی سے رہنے کی کوشش کرتا ہے, کرتی ہے, کوئی لڑکا یا لڑکی بیچارہ تو اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا, کوئی لڑکی نے کہا بھائی میں شرعی پردہ کروں گی, تو سب سے پہلے جو گھر سے مخالفت اماں ابا بھائی بہنی, اس کی پٹائی لگانا شروع کر دیتے ہیں, اماں بہنی مخالفت ہو جاتی ہیں, کیا ہو گیا رشتے نہیں آئیں گے تیرے, پردے میں چھپا لے گی, عجیب جہلانہ باتیں ہیں کہ تم پردے میں چھپا لیے تو رشتے کہاں سے آئیں گے, ایسی پھرو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں پسند کریں اور شادی ہو جائے تمہاری, تو یہ اپنا دین پیش کرنا ہے. تو بھائی ڈرنا چاہیے ان باتوں سے, तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लड़की शरीफ पढ़ता है तो भाई कहना चाहिए तो भाई दुनिया के मामले में उसको कह रहे थे ना, चार फैक्ट्रियां दो और लगाना चाह रहा है, दो घरें और लेना, तो बताओ वहाँ तो खूब हम तारीफें कर रहे हैं, हाँ अल्लाह और दे। तो भाई अपनी बेटी को भी तो बोलो, वो बेचारी दीन पर आ रही है, तखवे पर आ रही है माशाल्लाह, अब उसको अप्रिशिएट करें खानदान वाले घर वाले कि माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम भी करो और हमारे लिए भी दुआ करो। होना तो ये चाहिए कि तुम भी दुआ तुम भी करो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, और हम जैसे लोगों के लिए भी दुआ करो बेटा कि अल्लाह हमें भी तुम जैसा बनाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता। तो भाई दीन मुखालफत है, ये दीन मुखालफत कितने वाकयात हैं भर, अगर इस पर बात हो तो कई घंटे का बयान हो जाए। लोगों ने अपनी औलादों को आग कर दिया लड़के के दाढ़ी रखने के ऊपर, उसको घर से निकाल दिया, मारा पीटा, लड़कियों के शरई पर्दा करने के ऊपर बहनों ने मारा, माँ ने मारा, इतना मारा कि परफ्यूम की बोतल उठा के सर फाड़ दिया, उसके दो टाँके या तीन टाँके हैं लड़की के। एक यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पढ़ती थी, हजरत वाला के दौर की बात है ये, वहाँ बयान में बाकायदा मेम्बर रसूल पर पूरा वाक़ बताया कि कुछ तीन चार बहनें थी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी बेचारी, जो आजकल तालीमी इदारों का माहौल होता है, तो बिगड़ी हुई लड़कियां थी। वो हजरत वाला की कोई किताब मिल गई, एक एक बीच की कोई बहन थी बेचारी को किसी ने सहेली ने उसको दे दी, उसने पढ़ी तो रोने लगी वो, उसको एहसास हुआ कि मैं तो गटर में गंद में गलीस जगह गिरी हूँ, अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे। उसने तौबा इस्तग़फ़ार करी और उसने कहा कि आज के बाद मैं इस यूनिवर्सिटी में या तालीमी इदारे में जाऊँगी नहीं, जहाँ भेड़िए बैठे हैं। अब वो माँ कह रही क्यों नहीं जाओगी, तुम्हें जाना होगा। उसने कहा नहीं, वहाँ बहुत गंदा माहौल है, मैं नहीं जाऊँगी। अब सारे उसकी बहनें भी मुखालिफ, माँ भी मुखालिफ, अब्बा भी नहीं, तुम्हें जाना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है, वो सब बता रही है भाई ऐसा ऐसा माहौल है, नहीं तुम्हें जाना है। बारह इतना उसको फिर मारा कि उसके कई टाँके आए और लहू लहान कर दिया। लेकिन क्या उसका ईमान अल्लाह जिसको जस्ब करे, उसने कहा जान से मार दो लहू लहान, क्या कतल कर दो मुझे, जब कह दिया नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है, और पर्दा भी करूंगी मैं शरई पर्दा। तो सबने कहा ये जो पागल हुई है ना, ये किताब पढ़ के पागल हुई है, ये घर वाली मुसलमानों का हाल बता रहा हूँ उस वक्त में, कह रहे हैं ये जो पागल हुई है ये किताब है जो पढ़ के पागल हुई है। तो एक दो बहनों ने कहा हम भी तो पढ़ें, क्या है इसमें, क्यों पागल हुई है इसमें। अब अल्लाह के तो फैसले कुछ और थे ना, दोनों बहनों ने पढ़ी, वो उनकी हालत पलट गई, उनकी हालत पलट गई, अम्मा परेशान, अम्मा अकेली खड़ी रह गई। फिर तीनों बहनें वो अल्लाह वाली बनी, फिर हजरत के पास बयान में आने लगी, एड्रेस पूछते पाछते हैं, भी हजरत की सोबत नहीं उठाई है, बैठे किताब ने वो हालत कर दी माशाल्लाह। फिर शरई पर्दा और क्या क्या मामला शुरू हुए। तो भाई इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हैं, कहाँ तक बचे हैं कि दीन मुखालफत कितनी है हमारे माशरे में, और ये दीन मुखालफत करने वाले कौन है, कोई हिंदू ईसाई यहूदी नहीं है, ये मुसलमान ही तो हैं। और क्या कहते हैं इतना ज़्यादा क्यों, अल्फाज क्या हैं आप लोग भी सुने, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, बस काफ़ी इतना कर तो रहे हो। अभी फ़ोन आया खातून का कि उनकी बेटी को कुछ लोग देखने आए, बच्ची वो शरई पर्दा करने वाली, लड़का जो था वो बादशाह था लेकिन वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह का पढ़ा, उसने कहा भाई मैं किसी लड़की ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना गई हो, क्योंकि भाई बड़ा गंदा माहौल है वहाँ का, स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ और पैंट और पजामे टाइट पहनती है, बहुत ही गंदा माहौल है, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता ऐसी लड़कियों का, मुझे तो कोई शरीफ बादशाह बापर्दा लड़की चाहिए। तो बहरहाल घर वाले तो दीनदार इतने नहीं थे, लेकिन वो लड़का तो कुछ दीनदार था, बादशाह दाढ़ी वगैरह भी थी, लेकिन वही बात के तखवा लड़की में भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह सोच अच्छी थी। तो बहरहाल वो लड़की वगैरह को देखा पसंद भी आ गई, तो फिर वो लड़की की माँ ने कहा, लड़की की माँ ने लड़की की वालदा से कि ये जो आपकी बेटी जो पर्दा करती हैं, दो पर्दे होते हैं, एक नरम वाला और एक सख्त वाला, तो ये क्या ये सख्त वाला पर्दा करती हैं, किसी के नाम हरम के सामने नहीं आती। अब बताइए ये हमारे माशरे में दो पर्दे चल रहे हैं, एक नरम वाला सख्त वाला। अब कोई पूछे भाई ये नरम और सख्त क्या होता है, पर्दा पर्दा है शरई पर्दा के अब्बा भाई बेटा भांजा भतीजा इसी तरह जो महरम रिश्ते हैं वह उनके आगे औरत लड़की आ सकती है, लेकिन इसके अलावा जिनसे निकाह हो सकता है शरई इस्तलाह में उल्मा करार है, जिनसे निकाह हो सकता है वो तमाम नाम महरिम कहलाते हैं, वो उनसे पर्दा करना शरई पर्दा करना वाजिब है लड़की के लिए, फर्ज और वाजिब है। लेकिन आज हमारे मॉडर्निज्म जो लिबरल टाइप के जो लोग हैं, दीनदार लोग भी तो लिबरल है ना, एक तो बिल्कुल ही दुनियादार लिबरल है, फिर दीनदारों भी लिबरल हैं, फिर वो कहते हैं जी कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई घर की खवातीन जो लड़कियाँ जो होती हैं वो कभी बाहर जाती हैं तो वो नकाब लगा लेती हैं, लेकिन घर के देवर जेठ और یہ خالو نندوئی اور جتنے بھی نامحرم کزن وغیرہ آتے ہیں اور ان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, تو آپ سے بھی یہی کہنا ہے کہ اپنی بیٹی کو تو ہمارے گھر میں چونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو یہ پردہ گھر میں تو نہیں چلے گا, یہ باہر کی, ہاں باہر جائے لڑکی تو کر لے, نقاب لگا لے غیر لوگوں سے. تو بھائی یہ دین مخالفت ہے, آج کا بیان کا موضوع یہ ہے, یہ گناہ نہیں ہے, یہ کفر ہے, کفر ہے. دین گناہگار ہونا ایک الگ معاملہ ہے, ایمان نہیں جاتا اس سے, لیکن اللہ رب العالمین کے آگے اپنا قانون پیش کرنا یا اپنا قانون بنا کے مارکیٹ میں ڈالنا پھینکنا کہ یہ ہمارا قانون ہے, ارے بھائی تم اللہ کے قانون کے آگے اپنا قانون لاتے ہو, کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ آج جتنے بھی عیسائی, یہودی, ہندو, جتنے بھی کفار ہیں, بدھسٹ, وہ سب اسلام سے نفرت کرتے ہیں, مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, ہماری گاجر مولی بنا رہے ہیں, اسلام مخالف ہیں سب, وہ یہی چل رہا ہے نا معاملہ, نہیں ہے اسلام مخالف ہے نا, اسلام کی مخالفت کرتے ہیں نا. تو بھائی آج اکثر مسلمان, ہم بھی اسلام کی اور دین کی مخالفت کر رہے ہیں, کافر بھی مخالفت کر رہے ہیں اور اکثر مسلمان بھی مخالفت کر رہے ہیں. انگریز بھی کہتا ہے بھائی زیادہ نہیں, زیادہ نہیں, کافر بھی بولتا ہے زیادہ نہیں, یہ شدت پسند مولوی ہے, زیادہ نہیں, بس سیدھے سیدھے نماز پڑھو. ان کو نماز پڑھنے پہ تھوڑی کوئی اعتراض ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں تقوی نہیں آنا چاہیے مسلمانوں کے اندر. آج مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والوں میں, مسلمانوں میں تقوی نہ ہے. یہ کیا مرد الگ اور عورتیں الگ, سب اپنے ہی تو ہیں, یہ باتیں سنی سنائی نہیں بتا رہا میں, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, قریبی خود عزیز لوگوں نے بتایا, کہ یہ بالکل مصدقہ باتیں بتا رہا ہوں. ساری دینداری, سارے تقوی کی پول پٹی کھل جاتی ہے جب معاملات ہوتے ہیں, جب کوئی تقریب ہوتی ہے, کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے, کوئی پارٹی جب ہوتی ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے خاندان میں کہ اللہ والے کتنے, دیندار کتنے, بہروپیے کتنے, ٹوپی ڈرامے کتنے, اس وقت پتہ چلتا ہے. کوئی ایک آدمی کو متقی ہو اور وہ بولے بھائی شادی کی میری خواہش اس طرح سے ہو, ٹائٹ پڑ رہا ہوگا, بارہ سال سے, دس بارہ, گیارہ بارہ سال سے بڑا بچہ کوئی نہیں آئے گا عورتوں میں, اور بالکل صحیح ٹائٹ پڑ رہا ہوگا, کوئی تصویر وغیرہ نہیں کھینچے گی, موبائل سے بھی کوئی تصویر نہیں کھینچے گی, عورت مرد الگ الگ ہوں گے, پھر دیکھیے اس کی شامت. نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں کتنے گندے انڈے پڑیں گے, کتنے ٹماٹر پڑیں گے اس کو باتوں کے. اور کیا کہتے ہیں, سب اپنے ہی تو ہیں, کیا ہو گیا تم اتنے شدت پسند کیوں بن رہے ہو, کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا ہم دیندار نہیں, ہمیں نہیں پتا اللہ رسول نے کیا کہا ہے, کیا ہو گیا تم کو, اتنا غصے میں بھی رہتے ہو, شدت پسند بھی ہو گئے ہو, تم تو پتنی کیا ہو گیا, تم کیسے ہو گئے نفسیاتی, کچھ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے, پہلے صحیح تھا پتنی کہاں جا رہا ہے. ارے بھائی پہلے پاگل تھا, اب صحیح ہوا ہے, خدا کو بھولا ہوا تھا, جو لوگ خدا کو بھولے ہیں وہ پاگل ہیں, یہ آگے پتہ چلے گا. جس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ زیرک عقل مند کوئی نہیں ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ نظر رکھتے ہیں, آخرت کی تیاری میں رہتے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ عقل مند ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے, وہ ڈرنا چاہیے ایسی باتوں سے. تو بھائی یہ جو آج دین مخالفت چل رہی ہے, پورے دنیا کہ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے اس بارے میں کہ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, گناہگار کوئی آدمی ہے, اور وہ شرمندہ بھی رہتا ہے, ندامت تاری رہتی ہے, اللہ پاک مجھے معاف فرما دے, میں کیا کرتا رہتا, تو اس کی تو بخشش کی امید ہے, اس کی ہدایت کی امید ہے. لیکن کوئی یہ کہہ دے مخالفت پہ چلے, کہاں ہیں, کس نے کہہ دیا, کہاں ہیں قرآن پاک میں, کہاں ہیں, کون سی حدیث ہے, موضوع حدیث ہے یا غیر مستند حدیث شریف ہے, تو جھوٹی حدیث شریف ہے. پہلے بتاؤ حدیث کی نوعیت کیا ہے, کہاں کہا ہے آپ وسلم نے, کس نے کہا ہے, لاؤ. ہم تو نہیں مانتے, ہم تو وہ مانتے ہیں جس کو ہمارا دل دماغ مانے, سب مولویوں کی باتیں, اللہ رسول کی باتوں کیا کہہ دیا, مولویوں کی باتیں. تو اب یہ دین رخصت ہو گیا, اسلام کا پٹا گردن سے اتر گیا. تو بہت ڈرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے ان مسلمانوں کو جو دین مخالفت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک تو کھاؤ بھی پھر غراؤ بھی, کہا ہوا تھا نا, ایک تو کھاؤ بھی پھر غراؤ بھی, کہ اللہ کا کھا بھی رہے ہیں, اللہ کے محتاج بھی ہیں, اپنی پریشانی بھی اس کے آگے رکھ رہے ہیں, اللہ ہماری فلاں فلاں پریشانیاں دور کر دے, رو بھی رہے ہیں اس کے آگے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ پاک ہم زیادہ نہیں آئیں گے دین کی طرف, بس ہماری پریشانیاں تو نمٹاتا رہے تجھ سے, بس ہمیں کام نکلوانے, ہم تیری آدھی مانیں گے اللہ پاک, سیدھی سیدھی عبادت کریں گے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ ہم سے نہیں ہوگا. تو میٹھی چیزیں تو ہم دین کی تیری استعمال کر لیں گے, احکامات پر عمل کر لیں گے, لیکن اللہ پاک جو کڑوی چیزیں جس سے ہمارے نفس کو تکلیف ہوگی لیکن ہے تیرے احکامات, وہ اللہ پاک ہم نہیں کر سکتے, بولتے نہیں ہیں لیکن ہو تو یہی رہے. तो ये बनी इसराइल के जो यहूदी थे वो भी तो यही तो अल्लाह ने उनकी कुछ सिफात बताई हैं कुरान पाक में कि आधे हिस्से पे ईमान लाते थे आधे पर नहीं लाते थे। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अल्लाह का हुक्म है पूरे के पूरे, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। हम कहते हैं पूरे के पूरे गुनाहों की हराम लज्जतों में गरक हो जाओ, हमारा उल्टा मामला चल रहा है भाई। सही है ना, अकीके की तकरीब होती है। अकीका क्या कहलाता है भाई, बच्चे की एक मिसाल है। अकीका अकीका एक सदका कहलाता है, जब बच्चा पैदा होता है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उससे बलाएं और मुसीबतें दूर होती हैं, है ना। अकीका पता ही करते हैं लोग, लेकिन उस अकीके की सुन्नत को भी नफ परस्ती की भेंट चढ़ा दिया। बहुत बड़े बैंक्वेट में होता है पहले तो, फिर 500 लोगों को बुलाया जाता है, फिर उसमें भी मूवी तफसीरें होती हैं, फिर फंक्शन होते हैं, फिर नाच गाने होते हैं, फिर मखलूत माहौल होता है। पता चला वो सदका थोड़ी था, सदका का तो मतलब होता है सदका रद्द बला है। आप फरमा रहे हैं सदका रद्द बला है, लेकिन वो सदके को इस अंदाज में किया कि वो सदका चीख चीख के कह रहा है आ बला आ, आ बला आ। रद्द बला क्या होता, खूब बलाएं आएंगी अब तो। वो नंग धड़ंग किया मामला, वो नाच गाने किए कि अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो हर चीज में नफ्स आ जाता है, ये अकीका रहा, ये सुन्नत नबी, ये सुन्नत का अकीका रहा। वही बात कि भाई फिर मुसलमान हम क्यों नहीं पिटेंगे, कश्मीर में हम पिटेंगे, फलस्तीन में हम पिटेंगे, बर्मा में हम पिटेंगे, पूरी दुनिया में हम जलील ख्वार होंगे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लम के ने जो मर्ज बताया था, जब पूरे दुनिया के लोग तुमको घेर के मारेंगे और इस तरह और एक दूसरे को दावत देंगे, जिस तरह खाने में एक दूसरे को लोग दावत देते ना, आइए आइए आप खाइए आप खाइए, मिल के खाते हैं खाना, इस तरह एक दूसरे को दावत देंगे कुफार मुमालिक मिल के, क्या हो इनकी, इनको तहस नहस करें, और फिर सारे कुफार तुम पे टूटेंगे ऐसे जैसे कई दिनों के भूखे फाका फदा लोग कई खानों पे टूटते हैं, इस तरह तुम लोगों पे टूटेंगे। वजह पूछी गई तो आपने इरशाद फरमाया उस वक्त ऐसा होगा जब तुम लोगों को बहन लग चुका होगा। पूछा बहन का क्या मतलब है, दुनिया की मोहब्बत मौत से नफरत, दुनिया की मोहब्बत में सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई जब काफिर भी दीन को पसंद नहीं कर रहा है, इस्लाम को पसंद नहीं कर रहा है, और ख़ुद हम मुसलमान मौजूदा मुसलमान अक्सर पसंद नहीं कर रहे हैं दीनी अहकाम को, उसकी मुखालफत में चल रहे हैं, तो फिर अल्लाह पाक का अजाब नहीं आएगा, फिर हम लोगों की दुर्गत क्यों ना बने, फिर ख़तरनाक हुक्मरान क्यों ना आए, फिर IMF हमें होल्ड क्यों ना करे, IMF हमें कंट्रोल क्यों नहीं करे, फिर हुक्मरान और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अच्छे कहाँ से आएंगे, फिर हुकूमत को गालियाँ देना हमारे लिए जायज़ होगा, फिर इलेक्शन में कौन से लोग जीतेंगे, हमारी हालत आवाम की क्या इस वक्त चल रही है, महंगाई क्यों नहीं होगी, पेट्रोल 300 लीटर क्यों नहीं होगा, तखवा कहाँ है, अब तो दीन मुखालफत में हम चल रहे हैं, इतनी धुलाई पटाई होने के बावजूद फिर भी हमारी इसलाह नहीं हो रही, तखवे पे नहीं आ रहा है, ना हम अपना घर, ना हम अपना अंदर का और ज़ाहिर और बातनी माहौल बदल रहे हैं, ना अपने घर वालों की हमें फिक्र है कि तखवा नसीब हुआ नहीं हुआ, दो चार अमाल पे हम खुश हैं और उसी पे पूरी ज़िंदगी हम लोग गुजार देते हैं। एक साहब हैं मेरे पास आते थे, वो दाढ़ी नहीं थी उनके, अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी, दाढ़ी रख ली उन्होंने एक मुट्ठी। तो जब वो अपनी ऑफिस में जॉब में दाढ़ी वगैरह रखी तो लोगों ने बड़ी मुखालफत की, तो एक ने कहा भालू लग रहे हो, किसको कहा जा रहा है, दाढ़ी को, किसकी सुन्नत है, रसूल अल्लाह सल्लम की, 125,000 अंबिया कराम की सुन्नत, 125,000 सहाबा कराम की सुन्नत, तमाम अहले बैत की सुन्नत, तमाम तबताबीन बुजुर्गान दीन औलियाल्लाह की सुन्नत, क़यामत तक जितने औलियाल्लाह अल्लाह वाले नेक लोग आते रहेंगे सबकी, सबका तरीका ये दाढ़ी एक मुट्ठी। उसको क्या कह रहे हैं आजकल के मुसलमान, भालू लग रहे हो, एक कह रहे कैदी लग रहे हो, एक कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है तुम्हारी तो शक्ल ही काली हो गई, तुम्हारी बदशक्ल हो गई तुम दाढ़ी रखने से, नऊज़ बिल्ला, खूब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है भी बम बांध के कहीं फट जाएगा, भाई इससे बचो, ये ईसाई हिंदू नहीं कर रहा, यहूदी नहीं कर रहा ये बातें, ये मुसलमान कर रहे हैं। तो भाई ये एक थोड़ा सा जायज़ा बताए कि आज हम मुसलमानों के हालात किस रुख के ऊपर जा रहे हैं, क्या हमारे हालात चल रहे हैं, बात नहीं, बस तखवे की बात नहीं करो, बाकी जो दीन की बात करनी है वो आप करें, नमाज पढ़ना है पढ़ें, लेकिन तखवे की बात ना करें आप, मर्द अलग औरतें अलग उससे देखें, फिर दुम पे पैर रखना है, औरतें अलग मर्द अलग ये कर दो, किसी लड़की से बोल दो भाई ना महरमों के सामने आप ना आए, फिर देखें आप घर में फसाद। एक नौजवान ने बताया उसकी शादी अभी होने वाली है, अल्लाह हाफिज़ से खैर से कराया, उसने बताया कि अब वो जब उसकी मंगनी के बातचीत हुई थी वो सख्त नहीं आता था हमारी मजलिस में, जब बातचीत हुई अब फिर उसके बाद मंगनी का वो आने लगा, तो एक डेढ़ साल में अल्लाह ने उसको तखवा अता फरमा दिया। अब उसने रोक टोक शुरू करी तो सारे ससुराल वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, एक साल पहले तो तुम ऐसे नहीं थे जब बातचीत पक्की हुई थी, अब तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए हो, शिद्दत पसंद हो गए हो कि ये औरतों के सामने, तुम मेरी बेटी को कह रहे हो कि तुम नामहरमों के सामने क्यों आ रही हो, कज़नों के सामने क्यों आ रही हो, पर्दा कर लो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो बात यह है कि आज ये कितने वाक़यात बताऊँ कि आज लोग, हम मुसलमान अक्सर दीन मुखालफत में चल रहे हैं, इस चीज़ से दुनिया में भी मुसीबतें आएंगी और कब्र और हशर भी हमारा पिटेगी और खात्मा कुफर पे होने का अंदेशा है। तो खुदारा अल्लाह का खौफ रखें, अल्लाह से डरें। हजरत वाला हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह इरशाद फरमा देते, अगर किसी ने पक्का सोच लिया कि मुझे दीन पे नहीं आना, तकवे पे नहीं आना, तो भाई ठीक है, नहीं है, अगर उसके दिन ने पक्की ठान रखी है, लेकिन कम अज़ कम दीन मुखालफत में ना आए, गुनाहगार मर जाए दीन मुखालफत करते करते ना मरे। क्यों? अगर गुनाहगार मरेगा लेकिन साहिब ईमान तो मरेगा, कम अज़ कम ईमान तो बच गया, कभी ना कभी जन्नत में अल्लाह डाल देंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर दीन मुखालफत में मर गया और उल्टी सीधी बातें करके कलमा कुफर बक्के, तो फिर उसका खात्मा कुफर पे होगा, फिर दायमी जहन्नम उसको नसीब होगी। तो कम अज़ कम भाई इन चीज़ों से तो हम लोग बचें, प्यार से ये मसला बताएं लोगों को, घर में ये मसला छेड़ें कि भाई ये मसाइल हैं, प्यार से मोहब्बत से ये मसाइल लोगों को बताएं। तो ये बहुत चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बस हजरत वाला हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह फरमाते थे, जिसकी खाओ उसकी गाओ, जिसकी खाओ उसकी गाओ। भाई माँ के पेट से लेके अब तक हमें कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन ऐश करा रहा है, कौन हमारी मुसीबतों से बचाता है, कौन गमों से बचाता है, कौन बीमारियों से बचाता है, कौन दुश्मनों से बचाता है, कौन जिनों इनसे बचाता है, कौन हमारी मदद करता है, है ये पेशाब जो हम रोज़ाना करते हैं दिन में कई बार, ये फजला जो हम खारिज करते हैं, ये जो हम रोज़ रोटी खा रहे हैं, ये रोटी कौन खिला रहा है, ये जो दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, हम रोटी खा रहे होते हैं उस वक्त दो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं कि मेरे प्यारे बंदे ये रोटी जब खाएंगे तो फरिश्तों ये अपना निज़ाम दुरुस्त करो। तो एक फरिश्ता जो होता है गिज़ा की नाली में गिज़ा डालता है और सांस की नाली में हवा डालता है जिससे हमारा सांस का अखराज चलता रहता है। दो फरिश्ते इस पर ड्यूटी अल्लाह ने बिठा दिए कि खाना खाने के दौरान हम खाना भी खा रहे हैं, दांत भी चबा रहे हैं और सांस का भी हमारा मामला चल रहा है। कभी गौर किया, दो सांस, एक सांस की नाली होती है, गिज़ा की नाली होती है, एक वक्त में दो प्रॉपर फंक्शन कर रहे होते हैं। वो रब हमारा ऐसा प्यारा है, जब हम मुंह से खा नहीं सकते थे, माँ के पेट में थे, खा नहीं सकते थे हम लोग, तो आंवल नाल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की गिज़ा के ज़रिए हमने पेट में हमें रोटी डाली हमारे, कि मेरा बंदा है ये भी बेचारा, इसको अपनी ज़ात का ही नहीं पता, इतना ज़रा सा है कि लोथड़े की शक्ल में, बूटे की शक्ल में ज़रा सा, इसको पता ही नहीं, इसको गिज़ा मुझे देनी है, तो अल्लाह पाक उस वक्त हमें रोटी खिला रहे हैं। वो रब कभी हमें भूला? इंतहाई गुनाहगार होने के बावजूद, दीन मुखालफत में जाने के बावजूद, तकब्बुर और अकड़ होने के बावजूद, जब कोई परेशानी आती है, हम भूल के कोई भी बंदा अल्लाह को जब हम पुकारते हैं कि अल्लाह पाक ये मेरी मुसीबत अल्लाह दूर फरमा दे, तड़प के दो आंसू आए, अल्लाह की रहमत फिर दोबारा आ जाती है, लब्बैक या अब्दी, वह बंदे हाजिर हूँ बोल, परेशानी हटा दी। ये नहीं देखते गुनाहगार है, दीन मुखालिफ है, अरे भाई कब शर्म आएगी? कोई मोहब्बत का हक होता है, कोई इश्क का हक होता है अल्लाह का, कुत्ते को भी कोई दो रोटी खिला देता है तो वो दुम हिलाता रहता है सारी जिंदगी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जो झंग में जिनका मज़ार है, जिनकी पंजाबी में जिनकी हू बड़ी मशहूर है, उनका सब नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा शेर था पंजाबी का जिसका खुलासा यही था कि ए इंसान जल्दी कर तेजी दिखा, बाजी ले गए कुत्ते, यहाँ ये बाजी ले गए कुत्ते वफादारी में, है इंसान तू कुत्ते से ही बदतर है, कि कुत्ते को अगर कोई दो टुकड़े रोटी खिला दे, कोई दो बोटी खिला दे, तो वो सालों दुम हिलाता हुआ तलवे चाटता रहेगा, ये मेरा मालिक है, उसने मुझे खिलाया था, जबकि एक दफ़ा खिलाया था आपने, लेकिन उसको बरसों याद है, आज 50-50 साल हो गए, 60-60 साल हो गए, अल्लाह मोहब्बतें कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, माजूर नहीं बनाया, ख़ानदान अच्छा दिया, माँ बाप अच्छे दिया, अच्छा घर दिया, लंगड़ा लूला नहीं बनाया, काला बदशकल नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, हिंदू नहीं बनाया, मुसलमान बनाया, साहिब ईमान बनाया, साहिब सरवत बनाया, गाड़ी दी, घर दिया, इज्जत दी, मुकाम दिया, हर तकलीफ में मदद की, लेकिन उस रब की मोहब्बत हमारे दिल में आती नहीं है। हम तो यही कहते हैं, हम तो पुजारी हैं नफ्स और शैतान के, हम तो पुजारी हैं हिंदुओं के, ईसाइयों के, यहूदियों के, जो तलवारों से हमारी बोटियां बना रहे हैं, जो कुल्हाड़ियों से हमारे परख चोड़ा रहे हैं, हम उन्हीं की नक्काली करते हैं, उन्हीं के तरीके के ऊपर चलते हैं, हमारी कोई शादी शादी नहीं है, कोई खुशी खुशी नहीं, जब तक मेहंदी माइयों के रसूमात ना हो, जब तक जूता छुपाई की रस्म ना हो, हम लोग अल्लाह की क्या करम नवाजियां और हम क्या से क्या करते जा रहे हैं भाई, हद होती है किसी चीज की। फिर अल्लाह को जलाल आता है, फिर जलजले आते हैं, फिर बीमारियां आती हैं, फिर अल्लाह के अजाब आना शुरू हो जाते हैं। किस तरह से मसाइल हल होंगे, किस तरह से मसाइल हल होंगे? फिर कहते हैं यार ये या सलामो 101 लाख दफा पढ़ लो, आयते करीमा पढ़ लो, परेशानी आ जाए तो अल्लाह को नाराज़ किया हुआ है, एक आज़ाद ज़िंदगी चल रही है, फुल बदमाशी वाली ज़िंदगी हमारी चल रही है, और कोई मुसीबत आ जाए तो चिल्ले का ख़त्म करा लो। पीर साहब ने बताया, जाली पीर साहब ने या किसी आमिल ने, कर लो अगर हो जाए। मसलन हज़रत वाला हमारे मुर्शिद रहमतुल्लाह फरमाते थे, हमारे गुनाहों की वजह से और हमारी इसलह के लिए अल्लाह ने अगर कोई परेशानी भेज दी हो, अल्लाह ने परेशानी भेजी हो, जाओ बड़े से बड़े आमिल के पास, अगर आमिल तुम्हारी वो परेशानी हटा दे तो मैं उसका मुंह चूमूंगा उस आमिल का। इतनी बड़ी चैंपियन चीफ निकला वो मालिक, अल्लाह ने तो भेजी थी परेशानी, नाराज होके हमारी इसलह के लिए, और उस आमिल ने उस परेशानी को ख़त्म कर दिया, तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह से भी बढ़ गया। उन्होंने फरमाया अगर है तो लाके दिखाओ, उस आमिल का मुँह चूमूंगा मैं, जिसने परेशानी दी है वही हटाएगा तो परेशानी ख़त्म होगी। क्योंकि हज़रत वाला का अजीब प्यारा जुमला फरमाया कि छुड़ाता वो है जो पकड़ने वाले से ज़्यादा पावरफुल हो। छुड़ाएगा कौन? जिसने पकड़ करी हो उसके बराबर का हो या उससे ज़्यादा पावरफुल हो वो छुड़ाएगा। भाई अल्लाह से बड़ा कौन है? जब अल्लाह ने पकड़ करी है तो अल्लाह ही छोड़े तो छोड़े, कोई नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह वालों के पास जाके क्यों मसाइल हल हो जाते हैं? कि नऊज़ बिल्लाह वो अल्लाह से बढ़ गए, ये मिजाज मतलब नहीं होता। बड़े बड़े आमिलों से जो मसाइल हल नहीं होते, अल्लाह वालों की सोबत की बरकत से क्यों हल हो जाते हैं? वो इसलिए कि अल्लाह वाले मिजाज शनाफ होते हैं अल्लाह के, अल्लाह का खुर्ब उनको नसीब होता है, वो देख रहे होते हैं बेचारा मुसीबत में आया हुआ है, परेशान है, तो अपने काले करतूतों की वजह से परेशान है, अल्लाह नाराज़ है, और अल्लाह की नाराज़गी की वजह से इसके साथ ये अज़ाबात चल रहे हैं। तो वो फिर ऐसे टिप्स, ऐसे मामलात, ऐसे अमाल उसको करवाते हैं, अगर उस पर फजल होगा तो उनकी बात मानेगा, यानी वो तकवे की राह पे लगाते हैं, तकवे की राह पे लगाते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ चल रही थी। तकवे पर बंदा आया, अल्लाह खुश हुए, रहमत बरसी, मसला हल। लोग अल्लाह वालों को बाकरामत समझने लगते हैं। भाई वो तो ठीक है, अल्लाह वाले होते हैं माशाल्लाह बाकरामत, उनकी दुआएं होती हैं, तवज्जोहात होती है, सब अपनी जगह है, लेकिन राज ये छुपा हुआ होता है। कार फरमा उनका फजल होता है, नाम हम नाकिसों का होता है या फकीरों का होता है। हज़रत वाला का शेर है, कार फरमा उनका फजल होता है, नाम हम फकीरों का होता है। तो भाई ये राज की बातें, तकवा है तो सब कुछ है, तकवा नहीं है तो बेकार जिंदगी है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बंदगी का आला मुकाम किया तकवा, पहचानी यही से होगी। अल्लाह को लंगड़े लूले टूटे फूटे मुसलमान नहीं चाहिए, अल्लाह को चाहिए तगड़े मजबूत पावरफुल मुसलमान, जो मुत्तकी होते हैं, जो दिल को तोड़ लेते हैं लेकिन अल्लाह के कानून को नहीं टूटने देते। हमारे मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, बहुत ही प्यारा शेर याद आया, ना तेरा दिल चाहिए ना तेरी जान चाहिए, यानी अल्लाह को हमसे क्या चाहिए, ना तेरा दिल चाहिए ना तेरी जान चाहिए, उनको तुझसे बस खून अरमा चाहिए, उनको तुझसे बस खून अरमा चाहिए। अल्लाह पाक देखना चाहते हैं ये मेरा आशिक है, ये चलती फिरती लड़कियों का आशिक है, इन हसीनाओं का आशिक है, नफ्स का आशिक है, शैतान का आशिक है। हर दावा अपने पीछे दलील रखता है, हर चीज़ की कसौटी होती है, हर चीज़ की कसौटी होती है। कैसे पता चलेगा? इम्तहान में एक साल तक स्कूल वाले कॉलेज वाले पढ़ाते हैं ना, कोई भी ट्यूटर पढ़ाता है एक साल का, उसका एग्ज़ाम लिया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, भाई अब आपको पेपर देने का इम्तहान है, जो पूरा साल आपने पढ़ा है अब उसका इम्तहान होगा। क्योंकि जब तक इम्तहान नहीं लिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा स्टूडेंट है और कौन बुरा स्टूडेंट है, किसने कितनी मेहनत करी? तो अल्लाह भी तो आजमाइश करेंगे, अल्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह नहीं देखेंगे। अगर देखूँ तो सही, अल्लाह को तो सब पता है, अल्लाह को आजमाइश करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह को तो सबका पता है। लेकिन अल्लाह पाक को असेसमेंट आजमाइश करके खुद उस बंदे को उसका हाल उसके ऊपर खोलना होता है कि ऐ मेरे बंदे तू अपना हाल खुद देख ले। तो लोग जो लोग दीनी शऊर जिनको आ जाता है, वो कभी कभी अल्लाह वालों के कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग तबलीग पे जाते हैं, कोई दीनी सोबतों में जाते हैं, कोई आलिम बन गया, कोई मुफ्ती बन गया, मदरसों में बहुत कुछ पढ़ा, तबलीग उससे बहुत कुछ हासिल हुआ, अल्लाह वालों की सोबत से बहुत कुछ हासिल हुआ। जब ये सारी एक वक्त जब गुजर जाता है, फिर अल्लाह पाक देखते हैं कि सारी चीज़ों का हासिल का ये था कि हमें तकवा नसीब होता है। तबलीग का हासिल तकवा है, आलिम मुफ्ती बनने का हासिल तकवा है, हाफिज बनने का हासिल तकवा है, सोबत अल्लाह में जाने का हासिल तकवा है, पूरी शरीयत का नहीं छोड़े तकवा है तो सब कुछ है, तकवा नहीं तो कुछ भी नहीं। रहमत से अल्लाह किसी गुनाहगार को भी भेज दें, उनकी शनशाइयत में किसको दखल है जन्नत में। लेकिन भाई कानून के हिसाब से मुत्तकी लोग जन्नत में जाएंगे, जो गुनाहगार होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, आसान लफ्ज़ है। हत्ता के हाफिज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज हम सुनते तो रहते हैं कि हाफिज कुरान जो होगा वो 70 लोगों को, इतने लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी वो लेके जाएगा जन्नत में। है हदीस शरीफ, बिल्कुल है, لیکن ایک لفظ اکثر بھول جاتے ہیں اس بارے میں لوگوں کو شعور نہیں ہے. ہر حافظ قرآن نہیں, وہ حافظ قرآن جو متقی ہوگا. یہاں بھی تقوی کی شرط لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کے دل میں آتی ہے کہ بھائی آپ تو زیادہ تقوی بھی بیان کرتے ہیں, بھائی ہماری کیا اوقات, ہم کیوں بیان کریں گے تقوی کے اوپر, پوری شریعت میں تقوی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور تقوی کا فقدان چل رہا ہے. سارے عذاب جو ہیں وہ اس وقت تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے چل رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہیں کالرا پھیلا ہوا ہو اور لوگ مر رہے ہوں کالرا سے, ایک وبائی بیماری ہوتی ہے, تعاون پھیلا ہو, لوگ مر رہے ہوں, لیکن کوئی ڈاکٹر اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور بولے کہ بھائی میں ان امراض کا علاج نہیں کرتا, میں تو صرف نزلے زکام کا علاج کرتا ہوں, تو حضرت فرما دیتے اس ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, وہ بیکار ڈاکٹر ہے. جو کرنٹ افیئر پہ بات نہ کرے, جو کرنٹ افیئر یعنی جو بیماریاں کرنٹ لیول پہ چل رہی ہیں اس کا تو علاج کر نہیں رہا, بھائی لوگ مر رہے ہیں تعاون سے ان چیزوں سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ زنا, بدکاری, حرام کاریاں یہ وبائی صورت اختیار کر چکی ہیں, دین مخالفت وبائی صورت اختیار کر چکی ہیں, اس کی وجہ سے انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ اللہ کے عذابات آ رہے ہیں امت مسلموں کے اوپر. تو اس موضوع پر تو بات کرو, جو اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا تو پھر اور کون سی بات رہ گئی ہے, کس موضوع پہ بات کی جائے گی؟ یہ تعلیمی ادارے زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں, کوئی پوچھ رہا ہے اس بارے میں؟ کوئی مخلوط ماحول کس طرح کے بنتے جا رہے ہیں, ڈانس پارٹی, اس کا ڈانس پارٹیز کا کس طرح سے انعقاد ہو رہا ہے آج کل یونیورسٹیز میں اور کہاں کہاں اسکول میں, چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں آج کل یہ گانا بجانے کی تقریب اور ڈانس پارٹی چل رہی ہے, اور کیا کیا بس بتائیں کہ کس قدر واہیات پن چل رہا ہے سب. تو جو اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا بھائی, تو پھر کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اللہ کا پھر عذاب آئے گا, پھر نہیں آنے المنکر کا شعبہ یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. عمل بالمعروف تو لوگ کر رہے ہیں, نیکیوں کو حکم دینا, گناہوں سے بچنے کے اوپر نہیں آنے المنکر, یہ کون بولے گا؟ فرشتے نہیں آئیں گے, الگ سے کوئی جماعت فورس نہیں اترے گی. اور اللہ اور رسول کے یہ احکامات میں سے قرآن پاک کی آیات ہیں, احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں, شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے ساری باتیں لکھی ہیں, فضائل اعمال کے اندر درج ہے یہ بات کہ جب نہیں آنے المنکر میری امت چھوڑ دے گی تو پھر دعائیں جب مانگیں گے یہ لوگ, پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی, پھر انتظار کرنا سرخ آدھیوں کا اللہ کے عذاب کا, پھر بڑے بڑے عذاب آئیں گے. جب روک ٹوک لوگ چھوڑ دیں گے تو ایک تم غلط کر رہے ہو, اس پر عذاب آ رہے ہیں کہ اتنی سی بات کے اوپر کہ لوگ ایک دوسرے کو غلط کاموں کے اوپر بولنا چھوڑ دیں گے, تم غلط کرو اس پر عذاب آ رہا ہے. ذرا غور کیجئے گا, جب اس پر عذاب آ رہا ہے اب لوگ روک ٹوک نہیں کر رہے کہ تم غلط کرو, بلکہ اس میں اب شامل ہو گئے, شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو پھر کیا حشر ہوگا؟ پھر یہودی ہمارے سروں پر نہیں بیٹھیں گے آگے, پھر حکومت میں کیسے لوگ آئیں گے, پھر زندگی میں کیسے مسائل حل ہوں گے, پھر رزق میں تنگی کیوں نہیں ہوگی, بے روزگاری کیوں نہیں بڑھے گی, کاروبار کیسے چلے گا, اچھا کاروبار چلے گا, بیماریاں پھر کیوں نہیں آئیں گی؟ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں ہم, اللہ سے گناہ کرنا عادتاً جان بوجھ کے, جان جان کے, دس دس سال, بیس بیس سال, پچاس پچاس سال تک عادتاً حرام کاموں میں مبتلا رہنا گویا ایسے جیسے اللہ سے ٹکر لینا. اللہ, تو بھائی ہم چاہتے ہیں اگر انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ ہماری زندگیاں, تمام امت مسلمہ کی زندگیاں بدل جائیں اللہ کا فضل و کرم ہو, تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں. اور یہ شروع میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی, الرحمٰن فاسأل بہ خبیرہ, رحمان کی خبر, اس کا ترجمہ یہ کہ رحمان کی خبر اس کے باخبر سے پوچھو. جو قرآن پاک میں اللہ پاک حکم دے رہے ہیں, جو لوگ منکر ہیں نا صحبت اہل اللہ کے, یہ قرآن پاک کی آیت کا ذرا ترجمہ, ذرا تشریح تفسیر پڑھیں کہ اس کا کیا ترجمہ اللہ نے کیا فرما رہے ہیں. الرحمٰن فاسأل بہ خبیرہ, رحمان کی خبر اس کے باخبر سے پوچھو, جو لوگ باخبر ہیں ان سے جا کے معلوم کرو میں کیسا ہوں, تمہیں نہیں پتا میں کیسا ہوں بھی. جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو وہ وہاں ان لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, پھر تمہیں پتا چلے گا میں کتنا پیارا ہوں. پھر تم گناہ کرنا پھر تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, پھر عادتاً جو حرام کاموں میں لگے رہتے ہو یہ پھر نہیں رہے گا, پھر تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے گی جب میرے عارف لوگوں میں بیٹھو گے, جو میری پہچان والے لوگوں میں, جو لوگ مجھ کو پہچانتے ہیں, جب تم ان میں جا کے بیٹھو گے تو پھر گناہ کرنا عادتاً غیر زمانے کی بات ہو جائے گی, گناہ چھوٹیں گے نہیں, تو کم از کم نادم رہو گے, شرمندہ رہو گے, گناہ کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے پیارے کیسے ہوتے ہیں کہ تمہیں میں نے اس لیے وہاں بھیجا تھا, پھر تم مجھے کسی اور آنکھ سے دیکھو گے, ابھی تم مجھے کسی اور نظر سے دیکھتے ہو, لیکن جب میرے پہچان والے لوگوں میں جاؤ گے تو تھوڑے عرصے کے بعد میں تمہیں کسی اور رنگ میں نظر آؤں گا, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں, میری شان کتنی بڑی ہے. اس لیے اللہ پاک حکم دے رہا ہے. تو بھائی ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर हम चाहते हैं तकवा नसीब हो तो तकवे के जो ज़राए हैं वो इरादे से नहीं होता, इरादा इंसान करे तकवा का लेकिन दो चार दिनों में जोश दिखाएगा लेकिन फिर दोबारा ठंडा हो जाएगा, घड़ी में औलिया घड़ी में बूत बन के रहेगा, फिर दोबारा सारे वही काम उससे होने लगते हैं। तो अगर हम चाहते हैं दीन पर इस्तकामत रहें तो किसी भी अल्लाह वाले या उसके ग़ुलाम से जहाँ मुनासबत हो, जहाँ फ़ायदा हो, फ़ायदा होना और मुनासबत दिल से दिल मिलना, मुनासबत होना मशायख फरमाते हैं ये ज़रूरी है, वरना तरक्की नहीं होगी, वक्त ज़ाया करना है अपना। बहुत से लोग रश देख के या किसी के कहने सुनने पे बैत हो जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं कि हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बुज़ुर्गों ने इसलिए फरमाया कि फ़ौरन बैत मत हो बल्कि चंद दिन पहले किसी के सोबत में जाके बैठो, फिर कल्ब की कैफियात देखो, मज़ा आया उठ। और मुनासबत की पहचान क्या है कि कहीं बातचीत हो रही हो तो बंदे का उठने का दिल ना चाहे, कशिश हो और दिल उसकी तरफ खिंचने लगे, कल्बी मिलान होने लगे, बस ये मुनासबत की दलील है। फिर इंशाअल्लाह ताला इसलाह कराए, फिर एक आध महीने फिर बैत भी हो जाए बाद में, ये तरीका होता है। फिर देखे कैसा इस राह का मज़ा आता है, फिर तकवा भी नसीब होगा, सब कुछ हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ भी बोला गया अल्लाह सबसे पहले बोलने वाले को और हम सब सुनने वाले को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और हजरत वाला फरमाते थे भाई ये पांच अमल बयान कर दिए करो चाहे मुख्तसर से, सही बहुत ज़रूरी है। दो अरब के करीब मुसलमान हैं लेकिन बहुत कम मुसलमान हैं जो ये अमल कर रहे हैं। पांच अमल, तो पहले तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का अहतमाम करें, बग़ैर तजवीद के पढ़ना गुनाह है। लेकिन ये नहीं है गुनाह के डर की वजह से आदमी अगर किसी की तजवीद दुरुस्त नहीं तो जो कुरान पढ़ना ही छोड़ दे, मतलब ये कि फ़िक्र करे। एक डेढ़ महीने की मेहनत है, किसी भी कारी साहब से नूरानी कायदा पढ़ ले, भले हफ्ते में दो तीन दिन पढ़ ले तो तजवीद दुरुस्त हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है और चारों इमामों का इजमा, किसी का अख्तलाफ नहीं। और बग़ैर दाढ़ी के और जिन लोगों की बड़ी बड़ी मूछें थीं और दाढ़ियों को साफ़ करते थे, तो एक सही बुखारी के हदीस पाक का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को देखकर चेहरे को नफरत और नागवारी से मुंह फेर लिया और इरशाद फरमाया हलाक और बर्बाद हो, ये क्या तुमने शक्लें बनाई हैं कि मूछें रखते हो बड़ी बड़ी और दाढ़ियों को मुड़ाते हो। और एक और हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा की मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ मूछों को कतरवाओ। मूछें कम करनी है, दाढ़ियों को बढ़ाना है एक मुट्ठी। बाज़ लोग एक मुट्ठी दाढ़ी भी रखते हैं लेकिन एक मुट्ठी मूछ भी रखते हैं, तो भाई ये तो कोई बात नहीं। तो मूछें साफ़ करनी है, दाढ़ी एक मुट्ठी रखनी है, एक मुट्ठी मूछ का हुक्म नहीं है, जहन में रहे। तो जैसे एक साहब कहीं से आए पाकिस्तान के एक शहर से, वहाँ मूछे रखने का बड़ा रिवाज था। अब उनकी मूछे क्या थी कि वो क्या बताएं भाई, कि लग रहा था कि किसी बाइक का हैंडल, दोनों होंठ छुपे हुए थे बड़ी बड़ी, कोई डाकू भीम सिंह टाइप की मूछे थी उनकी। हजरत को तो कल्ब पे दहशत हो गई, हजरत ने मजाक में फरमाया जब कोई इस तरह का मूछ वाला आता है तो मैं डर जाता हूँ, पत्नी क्या करेगा ये करीब आके। बहरहाल तो फिर हजरत ने फरमाया कि भाई ये तो इतनी ख़तरनाक बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये तो नाजायज़ हराम है, रसूलुल्लाह ने हलाकत की बद्दुआ दी है ऐसे लोगों को। तो हजरत के खादिम तो उनको कहा भाई जल्दी से वो ट्रिम मशीन लेकर आओ, मैं भी इनकी मूछें साफ करा दूँ। हजरत ऐसे करते ही थे लेकिन पत्नी क्या, हजरत का मामला था अल्लाह से, अल्लाह वालों के अलग मामला होते हैं। तो वह शख्स ऐसा डरा जैसे उसको कोई छुरी से मार रहा है, वो जल्दी से गए दौड़ के ट्रिम मशीन लिया, उसने कहा आइए, उन्होंने कहा था नहीं बाबा करके और हाथ जोड़े और पैरों में हजरत के बिल्कुल पड़ गया वो शख्स ने, ऐसे जैसे उसको कोई कत्ल कर रहा हो। उसने कहा मूछ नहीं तो कुछ नहीं, उन्होंने मूछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और ये कर रहा ऐसा चीख मार के वो भागा, खान कसो दोबारा पलट गया नहीं आएगा, सब हंसते रह गए भाई ऐसा क्या हो गया। तो भाई ये मूछ ऐसी प्यारी चीज़ नहीं है कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं, तो भाई मूछ क्या चीज़ है, मूछ नहीं तो कुछ ना रही। तो हजरत एक दफ़ा एक बुजुर्ग ने भी फरमाया इसके ऊपर, मूछ नहीं तो कुछ नहीं इसे क्या मर्द, कोई ये मर्दानगी है कि मर्द की, मर्द की मूछ नहीं तो कुछ नहीं। तो हजरत फरमाया क्यों ये मर्दानगी है कोई मूछ, कि मर्द की मर्दानगी होती है, अगर मर्द की मर्दानगी नहीं तो कुछ नहीं, मूछ में ऐसी क्या चीज़ है कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं। तो कितने ऐसे मर्द हैं माशाल्लाह जो मूछ नहीं रखते, तो क्या वो मर्द नहीं है, मर्दानगी होनी चाहिए, मूछ से क्या ताल्लुक है। रसूल अल्लाह ने हलाकत की बद्दुआ दी है बड़ी मूछ को देख के, और आपने इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा जो मेरे हौज़े कौसर के करीब ना है जिसकी बड़ी मूछें होंगी, और उसे कब्र में मुनकर नकीर गुस्से की हालत में उससे मिलेंगे। एक तो मुनकर नकीर कब्र पर गुस्से की हालत में, नंबर तीन उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। ये बड़ी मूछ का मसला है ना, बहुत से लोग कहते हैं दाढ़ी मूछ में क्या है, दिल साफ होना चाहिए। तो सुन लो ये वही तो बात है, एतराफ़ करने बहुत आते हैं पता होता नहीं है कुछ। बहरहाल तो दाढ़ी रखने का अहतमाम करें, मूछें बिल्कुल बारीक रखें। बाज़ लोग अकली दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन ज़ीरो का रेगमाल, तो भाई ज़ीरो का या एक नंबर का रेगमाल दाढ़ी जो है ये कोई शरीर की हैसियत नहीं है। एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है और कबूल भी उसी वक्त होती है जब एक मुट्ठी रखी जाती है और यही साबित है। इसी तरह तीसरा मल माँ असल मिनल काबैनी मिनल ज़ारिफ इन्नार, सही बुखारी की हदीस शरीफ आप ने इरशाद फरमाया, मनकूल है कि ऊपर से आने वाला लिबास जिस पर टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मर्दों के लिए दो सूरतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब चल रहे हों जब और जब खड़े हों, जब चल रहे हों खड़े हों टखने खोल के रखना वाजिब है। बहुत से लोग होते हैं दीनदार, वो जब अपने जैसे लोग देखते हैं कि मुल्ला पार्टी देखते हैं तो टखने ऊपर कर लिए, मिस्टर पार्टी देखी तो टखने नीचे कर लिए, पैंसे नीचे कर लिए, ये क्या बहरूपियापन है, तो मुनाफिकत है ये तो भाई। अल्लाह तो हर जगह है, ये थोड़ी देखी जैसी पार्टी देखी वैसे बन गए, कहीं मिस्टर देखे तो मिस्टर बन गए, कहीं मुल्ला देखे तो मुल्ला बन गए, तो ये दोगलापन है मुनाफिकत है। जहाँ जाते हैं तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई भी महफिल हो तेरा रंगे महफिल देख लेते हैं। हजरत का शेर है, अल्लाह का बंदा हमेशा बाखुदा रहता है, वो लोगों का जैसा नहीं होता माहौल देख के, बल्कि वो जहाँ जाता है वो अल्लाह के फजल से अपना जैसा लोगों को बना देता है, वो उन जैसा नहीं बनता। ये अल्लाह वालों की शान होती है, ये बिकते नहीं है कदम कदम पे कि पैसों से बिक गए, अमीर आदमी देखा तो बिक गए ईमान बेच दिया, लड़की हसीन देखी तो ईमान बेच दिया, उसको घूरने लगे मौलवी साहब। अल्लाह वालों का ये मामला नहीं होता, क्यों? वो एक बार बिक चुके होते हैं, वो अल्लाह के हाथों बिक चुके होते हैं, इसलिए अनमोल होते हैं, बिकाऊ माल नहीं होते। और ये नज़रों की हिफाजत चौथा मल, कुल लिलमुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करें। अल्लाह पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नज़रों की हिफाजत का हुक्म दे रहे हैं और मर्दों को, और शर्म गाह की भी हिफाजत का हुक्म दे रहे हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, ज़िना अल-ऐन नज़र, नज़रबाज़ी आँखों को ज़िना है। और दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, लानत नाज़िरा व मंज़ूर अलैही, अल्लाह पाक लानत फरमा, ज़रा गौर कीजिए, रसूल अल्लाह बद्दुआ दे रहे हैं, अल्लाह लानत फरमा जो दूसरे की बहन बेटियों को देखे, लड़कियों औरतें नामहरमों को देखे, बदनज़री करे, लानत फरमा अल्लाह पाक तू, और अल्लाह पाक उन पर भी लानत फरमा, उन औरतों पर, उन लोगों पर जो अपने आप को बदनज़री के लिए पेश करे। तो जो ख़वातीन हर एक नामहरम के सामने मुंह खोल के आ जाती हैं, रसूलुल्लाह की लानत की बद्दुआ आ रही है दोनों पर, देखने वाले पर और दिखाने वाली पर, डरना चाहिए। एक और हदीस शरीफ है, उसमें मर्द भी आते हैं और ख़वातीन भी आती हैं, बड़ी अजीब व गरीब हदीस शरीफ है, बड़ी बारीक तख्वाइश में कि इसमें मर्द औरत की कोई तख़सीस नहीं है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाइए उस इंसान के ऊपर जो खुद तो ना देखे लेकिन ये तमन्ना रखे कि मुझे लोग देखें। मेरा गौर कीजिए, तमन्ना की बात आ रही है। मिसाल के तौर पर बात से नए नए सूफी होते हैं या आधे सूफी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़रों की हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल के गोशे में अक्सर ये होता है कि चलो मैं औरतें लड़कियों को नहीं देख रहा तो मैं ऐसी पोजिशन बना के सामने आऊँ तो मेरा हुस्न देखने में कितना हसीन हूँ। मतलब सब्जी दे रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे, अब भाई अब ख़वातीन सामने खड़ी हैं और जगह ऐसी पोजीशन है कि आप थोड़े से ऐसे खड़े हो जाएं कि वो ख़वातीन की नज़र आप पे ना पड़े, लेकिन जान जान के सामने आ रहे हैं, अल्लाह वगैरह अल्लाह देख लिया, अल्लाह मियाँ आपने, मैं तो नज़रों की हिफाजत कर रहा हूँ, तो भाई अल्लाह तो सारी मक्कारियाँ देख रहा है लेकिन दिल में लड्डू फूट रहा है, चलो मैं नहीं देख रहा वो तो मुझे देख रही है, और अल्लाह तो रगे जहाँ से ज़्यादा करीब है। तो ये कामिल तकवा मुबारक है, कोई नज़रों की हिफाजत करा तो ये भी बचे कि औरतों से ज़रा दाएँ बाएँ पोजीशन हटा के करे। हाँ मजबूरी हो तो ठीक है, और तमन्ना भी नहीं रख रहा, कोई तमन्ना नहीं है, वो आगे पीछे भी नहीं हो सकता, वो फिर अलग मामला है। उन लोगों की नहीं जो तमन्ना रखते हैं कि मैं नहीं देखूँ ये मुझे देख लें, है ना बारीक बात। तो भाई अब आदमी बाप दादा कहता है इतनी सख्ती, इतना जबर, जिंदगी में मज़ा क्या आएगा, करके तो देखो, अगर दोनों जहाँ के मज़े ना मिलें तो बात करना, करके तो देखो, करके तो देखते नहीं हम, बातें बना लेते हैं पहले से पहले। एक आदमी कभी मक्का शरीफ गए ही नहीं और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो उसको कहेंगे भाई आप मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तो रोज़ मक्का शरीफ आता जाता रहता हूँ, आप गए नहीं और बहस करो नहीं, जगह हूँ नहीं उन्हीं, अगर इतनी बहस करो तो जाके देखा तुमने, कहेगा नहीं, तो उन्होंने कहा जाके देखो फिर बहस करते हुए अच्छे लगोगे। तो ऐतराज़ करने से कुछ नहीं होता, ऐतराज़ उस वक्त करो पहले उस वादी से ज़रा घूम कर तो आओ, फिर बाद में बात करना कि उस वादी में तुम्हें कितने गड्ढे घोमड़े नज़र आए, कितनी खराबियाँ नज़र आई, चले हो नहीं देखा है नहीं, ऐतराज़ पहले। और पांचवा बल क्या है भाई, दिल में गंदे ख्यालात लेकर नहीं आ रहे, बिल्कुल दिल को पाक साफ रखना है। ये दिल बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कि अगर मुझे तलाश करना हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगा, अगर तलाश करना हो तो मैं बंदे मोमिन के टूटे हुए दिल के करीब मिलूंगा, मैं वहाँ तलाश करना मुझे। ये हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं टूटे हुए दिलों के करीब मिलूंगा। कौन सा टूटा हुआ दिल? ये तकवे से जो लोग रहते हैं, क्योंकि रोज़ाना कदम कदम पे इनके दिल टूटते रहते हैं। इनके भी जज्बात होते हैं अल्लाह वालों के, मुत्तकी लोग, इनका भी दिल चाहता है हम हसीनों को देखें, उनके अंदर भी शहवत होती है, इनके साथ भी नफ्स और शैतान लगे हुए, लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होती है। अल्लाह के हुक्म की तलवार से अपने नफ्स के परख चौड़ाते रहते हैं, वो जो खून अंदर ही अंदर गिरता रहता है, जो बातनी शहादत होती रहती है वो कोई नहीं देखता, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात देखती है। फिर फजल भी अल्लाह पाक ऐसा फरमाते हैं जिसको आदमी ज़बान से बता ही नहीं सकता। तेरे हाथ से ज़ेरे तामीर हूँ मैं, हज़रत वाला का शेर है, तेरे हाथ से ज़ेरे तामीर हूँ मैं, मुबारक मुझे मेरी वीरानियाँ हैं, मुबारक मेरी वीरानियाँ हैं, मुबारक मुझे मेरी वीरानी वीरानियाँ। और एक और शेर था, तेरे हुक्म की तैख से मैं हूँ बिस्मिल। अल्लाह को फरमा रहे हैं, तैख कहते हैं तलवार को, कि अल्लाह पाक तेरे हुकुम की तलवार से मैं हूँ बिस्मिल। बिस्मिल कहते हैं, आपने मुर्गे को देखा होगा, उसको छुरी मार के कोई छोड़ देता है ना, चिकन लेने जाते हैं तो तड़पता रहता थोड़ी देर तक, तो बिस्मिल इसे कहते हैं कि जो तड़पता हुआ, जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर दिया जाए, जैसे तड़पता हुआ मुर्गा, जैसे मुर्गे बिस्मिल कहते हैं ना महावरतन, ये कि तेरे हुकुम की तैर से मैं हूँ बिस्मिल, कि अल्लाह तेरे हुकुम की तलवार से मैं इस तरह से तड़प रहा हूँ जैसे मुर्गे को काट के कोई छोड़ दे आधा तड़पता हुआ, ऐसे तड़प रहा हूँ मैं। शहादत नहीं मेरी ममनून खंजर, शहादत नहीं मेरी ममनून खंजर, कि मैं मेरी जो शहादत है वो आम जो शहादत होती वो तो खंजर के मोहताज होती है, खंजर पड़े को गोली लगे तो मैं शहीद हूँ। अल्लाह मैं तो रोज़ाना हर वक्त आपके हुक्म से ही शहीद हो रहा हूँ, वो शहादत मेरी बातनी है, वो कोई नहीं देखता, सिर्फ आपकी आँख देखती है कि मेरा बंदा पूरी दुनिया में बस मुझे राजी करने के फिक्र में दिल के परख छोड़ा रहा है, गुनाह कर सकता है, हराम काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे इश्क में मेरी मोहब्बत में डूब के दिल को पटकता रहता है, परख छोड़ाता रहता है, तो फिर क्या अल्लाह पाक उसको अपना वली नहीं बनाएंगे? इन औलिया हु इल्लमुत्तकून, यही चीज़ अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया, मेरा वली सिर्फ वो है जो तकवे से रहेगा, जो गुनाहों को छोड़ेगा, और कोई दूसरा वली नहीं। दो वली होते हैं कि दो, जिसने कलमा पढ़ लिया ईमान लाया वो आम विलायत है, वो भी वलीउल्लाह बन गया, लेकिन विलायत खासा, विलायत खास विलायत जो कुर्ब इलाही जो हासिल होगा वो तकवे के बाद बंदे को हासिल होती है। और ये पाँचों माल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहाँ ने मुनासबत हो वहाँ ताल्लुक़ कायम कर लें, थोड़े अरसे में इंशाल्लाह इन पाँचों माल की तौफीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह जो कुछ भी बोला गया सुना गया अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कहने सुनने में वो गलती कमी बेशी हो गई तो शान रहमत से बख्श दे, माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारा मिल बैठना जो तेरी रजा तेरी खुशी की नहीं, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए हम सब की और हमारे अहल वयाल की मगफरत फरमा। या अल्लाह हम सबको और हमारे अहल वयाल को कामिल तक़वा नसीब फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमों को अल्लाह पाक हम सबको कामिल हिदायत नसीब फरमा, हम सबको अल्लाह पाक गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों की शर्मसारी और निदामत हमारे क़ुलूब को अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन मुखालफत से बचा ले, कुरान और हदीस की अहकामात को मजाक बनाने से बचा ले, अल्लाह कुफर में जाने से बचा ले। या रब्बे करीम अपनी पकड़ अपने अज़ाब से हम सब की उम्मत मुस्लिमा की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह कामिल तक़वा और हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस में से जिस जिस के दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं अल्लाह तू जानने वाला है, हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह जो भी आए महरूम ना जाए, दुनिया भी बना दे आखरत भी बना दे। या अल्लाह जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफा कुल्ली नसीब फरमा, जितने भी मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अरहमर रहीमीन बिलखुसूस या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह ये मलून खबीस यहूदी जो ज़ुल्म व सितम कर रहे हैं अल्लाह उनको उस ज़ुल्म व सितम से बाज़ रख। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ज़बरदस्त मुँह तोड़ जवाब दिलवा दे, मुँह तोड़ जवाब दिलवा दे। या अल्लाह मुसलमानों की हुक्मरानों की या अल्लाह जो बेगैरती और बेहसी है अल्लाह उसको दूर फरमा दे। या अल्लाह ये अरब के अमारात के اس حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے، اللہ پاک یا رب کریم مسلمانوں کا درد ان کو نصیب فرما، یا اللہ ان حالات میں بھی ہم لوگ میچ میں لگے ہوئے، کرکٹ میں لگے ہوئے، موبائل پہ لگے ہوئے، گندی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں شرم اور ایمانی غیرت نہ نصیب فرما، یا اللہ رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، ان کا درد بانٹنے کی اور ان کا غم سمجھنے کی اور ان کے لیے دل سے رو کے دعائیں کرنے کی، اللہ پاک اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری بے حسی کو، قلب پر جو قفل پڑ چکے ہیں، قلب پہ زیائی سنگ جو آ چکا ہے، زنگ آ چکا ہے غفلتوں کی وجہ سے، کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے قلب کو مجلہ مصفہ کر دے اپنی محبت سے، اپنے نور سے، اپنی روشنی سے، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ یا رحم الرحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے، اللهم صل على محمد وعلى آله.